दिन भर 7 फरवरी दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया, राहुल गांधी पर कसा तंज।
लेकिन आखिर भूकंप आ ही गया। मैं सोच रहा था कि भूकंप आया कैसे।
आपको ले चलेंगे देवबंद और वहां के मतदाताओं से पूछेंगे कि उनको नई सरकार से क्या हैं अपेक्षाएं।
काम होता है लेकिन तसल्लीबख्श काम नहीं होता। उम्मीद तो सबसे की जाती है, होता कुछ नहीं। शिक्षित होना चाहिए, सबसे पहले शिक्षित होनी चाहिए। मुस्लिम समुदाय शिक्षित नहीं है।
जिक्र होगा पूर्वांचल के पिछड़ेपन का भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले का बचाव किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नोटबंदी का फैसला सही समय पर लिया गया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक होने की वजह से ये सही वक्त था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान मोदी ने विपक्षी नेताओं की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरे मुद्दों पर उठाए गए सवालों का जवाब भी दिया। AIADMK के वरिष्ठ नेता PH पांडियन ने दावा किया है कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की मौत स्वाभाविक परिस्थितियों में नहीं हुई। जयललिता का इलाज करने वाले डॉक्टरों ने कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी मौत के कारणों की जानकारी दी थी और इसकी वजह कई अंगों का नाकाम होना बताया था। विधानसभा स्पीकर रह चुके पांडियन ने दावा किया कि उनकी जानकारी के मुताबिक जयललिता की किसी से बहस हुई थी, किसी के धक्का देने पर वो गिर पड़ी थी, संदेह न हो इसलिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। पांडियन ने शशिकला के पार्टी महासचिव और विधायक दल का नेता चुने जाने पर भी सवाल उठाया है। रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस योहानिस ने देश की सत्ताधारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी पर संकट की स्थिति खड़ी करने का आरोप लगाया है। भ्रष्टाचार के कुछ मामलों में राहत देने वाले कानून के खिलाफ विरोध की वजह से सरकार को इस आदेश को वापस लेना पड़ा। राष्ट्रपति योहानिस ने संसद के संयुक्त सत्र में सरकार को समाधान तलाशने को कहा है। उन्होंने कहा,
रोमानिया
को मजबूत सरकार की जरूरत है, एक ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है जो पार्टी के आदेशों का पालन करती है। रोमानिया को ऐसी सरकार की जरूरत है जो पारदर्शिता के साथ काम करती है, जो दिन के वक्त फैसले लेती है, रात को छुप कर नहीं। ये थे रोमानिया के राष्ट्रपति के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोला सार्कोजी पर साल 2012 चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान अवैध तरीके से धन खर्च करने को लेकर मुकदमा चलाया जाएगा। उन पर खर्च की सीमा को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप है। सार्कोजी इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं। सार्कोजी 5 साल तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहे थे। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि सीरियाई सेना की दमिश्क के करीब स्थित जेल में 5 साल के दौरान करीब 13,000 लोगों को मौत की सजा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों को सजा दी गई उनमें से आम लोगों की बड़ी संख्या थी। इनमें सीरिया सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल हैं। सीरिया की सरकार राजनीतिक विरोधियों का उत्पीड़न करने के आरोपों को गलत बताती रही है। लंदन में रहने वाले सीरिया के एक प्रवासी डॉक्टर बशर फरहात ने सीरिया की जेल में लंबा वक्त बिताया है। उन्होंने BBC को जेल के हालात की जानकारी देते हुए कहा, वहां से ज्यादा खराब हालात कहीं नहीं है। तादाद से ज्यादा भीड़, न पर्याप्त खाने की व्यवस्था, न हवा का इंतजाम और न ही स्वास्थ्य सुविधाएं। वहां रहने वाले लोगों का हर दिन उत्पीड़न किया जाता है। मैंने जो देखा वहां ज्यादातर लोगों की मौत कठिन परिस्थितियों की वजह से हुई। कुछ लोगों की मौत उत्पीड़न की वजह से हुई। वहाँ किसी तरह की बीमारी या सामान्य चोट भी जान पर खतरा बन जाती है। ये थे डॉक्टर बशर फरहात के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अफगानिस्तान के अधिकारियों के मुताबिक राजधानी काबिल में हुए आत्मघाती बम धमाके में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई। ये धमाका काबुल स्थित सुप्रीम कोर्ट के एक प्रवेश द्वार के करीब हुआ। यह हमला किसने किया है अभी इसकी जानकारी नहीं हो सकी है। पहले तालिबानी चरमपंथी अदालतों को निशाना बनाते रहे हैं। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नोटबंदी का फैसला बिल्कुल सही समय पर लिया गया था। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर खूब निशाना साधा और कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद विपक्ष के नेताओं को अपने बयान बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। मंगलवार को लोकसभा की कार्रवाई पर सलमान रावी की रिपोर्ट।
तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और ये अचानक नहीं होता है, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है और इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है।
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के आरोपों का जवाब व्यंग कविता और शास्त्रों की पंक्तियों के हवाले से दिया।
नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मुगा, उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं ना कि मनोरथों से, सोए हुए सिंह के मुख में हिरण आकर से प्रवेश नहीं करता है, उसको भी शिकार करना पड़ता है।
बजट सत्र में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बीच काफी कड़वाहट देखने को मिली थी। कांग्रेस ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और नोटबंदी के फैसले की आलोचना भी की थी। सोमवार को लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला था। मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा,
इतिहास सिर्फ किताबों की अटारी में पड़ा रहे तो समाज जीवन को प्रेरणा नहीं देता है। हर युग में इतिहास को जानने का, इतिहास को जीने का प्रयास आवश्यक होता है। उस समय हम थे या नहीं थे, हमारे कुत्ते भी थे या नहीं थे, औरों के कुत्ते हो सकते हैं, हम कुत्तों वाली परंपरा से पले बड़े नहीं हैं।
इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि वो सरकार के खिलाफ ऐसे खुलासे करने वाले हैं जिससे भूकंप आ जाएगा। राहुल गांधी के बयान पर प्रधानमंत्री ने कुछ इस तरह कटाक्ष किया,
लेकिन आखिर भूकंप आ ही गया। मैं सोच रहा था कि ये भूकंप आया कैसे, क्योंकि धमकी तो बहुत पहले सुनी थी। कोई तो कारण होगा कि धरती मां इतनी रूठ गई होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी पर निशाना जारी रहा।
मल्लिकार्जुन जी कह रहे थे कि कांग्रेस की कृपा है कि अब भी लोकतंत्र बचा है और आप प्रधानमंत्री बन पाए। वाह क्या शेर सुनाया। बहुत बड़ी कृपा की आपने इस देश पर, लोकतंत्र बचाया, कितने महान लोग हैं।
नोटबंदी पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था ठीक थी इसलिए नोटबंदी का फैसला लिया गया और वो भी सही वक्त पर। उसी तरह सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से पहले राजनेताओं ने जाने कैसे कैसे बयान दिए, मगर जब उन्होंने देखा कि देश का मिजाज अलग है तो उनकी भाषा बदल गई। सलमान रावी, BBC, दिल्ली।
खबर सच है अगर BBC पर है।
उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इलाका कभी देश और प्रदेश के प्रमुख नेताओं की कर्मस्थली था। प्रदेश के कई मुख्यमंत्री इसी इलाके से हुए, लेकिन न तो पूर्वांचल का अपेक्षित विकास हो पाया और न ही नेतृत्व का यह सिलसिला कायम रह पाया। आज कोई भी पार्टी पूर्वांचल के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने से बच रही है। इन सब के पीछे क्या वजह हैं, यही जानने की कोशिश की है समीर आत्मज मिश्र ने अपनी इस रिपोर्ट में।
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक चुनावी जनसभा हो रही है। जनसभा में एक वरिष्ठ व्यक्ति और लोकगीत गायक श्री राम यादव से हमारी मुलाकात हुई। श्री राम यादव किसी पार्टी से जुड़े नहीं थे, लेकिन इलाके की बदहाली पर वो काफी खफा दिखे।
जनता को गुमराह किया गया, अगुमराहियत की शिकार जनता हुई, जो कि देश की मुख्य धारा से हटकर एक ऐसा माहौल पैदा किया लोगों ने कि जातीयता के कुंभ में नारा लगाया, जिससे हमारा देश प्रदेश सब पिछड़ता गया। प्रतिभाओं की कमी नहीं है।
उनका यह भी कहना था कि अब तो इस इलाके से कोई बड़ा नेता भी नहीं हो रहा है। दरअसल उनकी ये चिंता जायज थी। पूर्वांचल के इसी इलाके से कमलापत त्रिपाठी, श्रीपति मिश्र, राम नरेश यादव, वीर बहादुर सिंह जैसे मुख्यमंत्रियों के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, कल्पनाथ राय जैसे तमाम दिग्गज नेता हुए और यहाँ के लोग इनकी चर्चा भी करते हैं। लेकिन पिछले करीब 3 दशक से राजनाथ सिंह को छोड़कर एक भी मुख्यमंत्री इस इलाके से नहीं हुआ। मऊ जिले के वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र चौहान इसकी वजह बताते हैं।
पहले राष्ट्रीय पार्टियां यहां उत्तर प्रदेश में काबिज थी, कांग्रेस थी, उनका यहां धीरे धीरे ग्राफ घटता गया और इन दो जो प्रमुख पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, की जो मुखिया हैं, जो प्रमुख हैं, वो उनका पूर्वांचल से कोई लेना देना नहीं रहा और यही कारण रहा कि धीरे धीरे यहाँ की राजनीतिक प्रतिभाएं दबती गई और उनको वो स्थान नहीं मिला उनकी पार्टी में।
जानकार कहते हैं कि कांग्रेस पिछले काफी दिनों से सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। सपा और बसपा में नेतृत्व का विकल्प नहीं है और बीजेपी यहाँ के किसी नेता को बतौर मुख्यमंत्री आगे करने से ही चक रही है। ये अलग बात है कि बीजेपी में कलराज मिश्र, राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा और योगी आदित्यनाथ की चर्चा बड़े नेताओं में होती है। लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार दयानंद पांडे कहते हैं,
पूर्वांचल नेता कलराज मिश्र है। कलराज मिश्र हो सकते हैं, जलाधार उनके पास नहीं है। जलाधार तो राजनाथ सिंह के पास है। ये दो नेता है पूर्वांचल के भाजपा में। रही बात बसपा सपा की, तो बसपा सपा में मुलायम और मानसी कुछ तो अखिलेश आ गए। मुलायम अखिलेश और मानसी को नेता कौन होना चाहिए। कांग्रेस में राहुल गांधी नेता है, भाजपा में नरेंद्र मोदी नेता है। वो चाहते नहीं की कोई और नेता विकसित हो। इंदिरा गांधी के पैटर्न की राजनीति, इंदिरा गांधी यही चाहती थी उनके आगे कोई ना हो, इसीलिए अपने ही मुख्यमंत्रियों को भेजती रहती थी, बार बार इधर उधर करती रहती थी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रदेश का नेतृत्व जब यहाँ के नेताओं के हाथ में था तो विकास के कई कार्यक्रम भी यहाँ चले, लेकिन नेतृत्व चले जाने के चलते विकास कार्य लगभग बंद हो गए। जबकि ये इलाका न सिर्फ खेती की दृष्टि से बेहद उर्वर है बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी काफी अहम है। कई इलाकों में तमाम कुटीर उद्योग भी फलते फूलते रहे हैं। बीएसपी नेता और गाजीपुर के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी कहते हैं,
ये वो दौर था जब उत्तर प्रदेश के खजाने का हिस्सा पूरे प्रदेश में बांटा जाता था, लेकिन अब वो दौर आ गया है जो उत्तर प्रदेश के खजाने को पैसे को बांटने वाले लोगों के हाथ तो वही हैं, लेकिन दिल बड़ा छोटा है। वो अपने चहेते क्षेत्रों तक वो विकास सीमित कर देते हैं।
पूर्वांचल के पिछड़ेपन के लिए कुछ लोग जाति और संप्रदाय आधारित राजनीति को भी जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन ये समस्या सिर्फ पूर्वांचल की ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की है। ऐसे में विकास कैसे हो सकता है, इसके लिए भी कई सुझाव दिए जाते हैं। ऐसा ही एक सुझाव अफजाल अंसारी भी देते हैं।
धीरे धीरे चिंगारी सुलगने लगी। अब अलग पूर्वांचल राज्य की मांग धीरे धीरे जोर पकड़ रही है और पूर्वांचल का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पूर्वांचल राज्य अलग न बन जाए।
समीर आत्मज मिश्र, BBC, गाजीपुर।
उत्तराखंड कहने को तो पहाड़ी राज्य है, लेकिन अगर विधानसभा सीटों के बंटवारे के लिहाज से देखा जाए तो इसे विशिष्ट रूप से पहाड़ी राज्य नहीं कहा जा सकता। उत्तराखंड के 13 जिलों में से 4 जिले मैदानी हैं, लेकिन इनमें आबादी और मतदाताओं का प्रतिशत अन्य 9 जिलों से अधिक है, लिहाजा सीटों की संख्या भी कमोबेश बराबर ही है। अलग राज्य की मांग हुई थी तो हिल स्टेट की भावना जोरों पर थी, लेकिन वही भावना अब वोट और सीट के गणित में उलझकर दम तोड़ रही है। एक खास रिपोर्ट के साथ देहरादून से शिव जोशी।
10 जिलों में 34 अर 3 में 36 अर 10 जिलों में 34 अर 3 में 36 विधानसभा को कनुबे ढंगु गणित।
ये बोल एक गढ़वाली वीडियो एल्बम से हैं जिसमें सीटों के बंटवारे से शत विशत हुई पहाड़ी जन आकांक्षा की व्यथा और एक नई करवट का जिक्र किया गया है।
हाल ये छन इबारी क्या खाली ने पीढ़ी तुम्हारी।
2000 में अलग राज्य के रूप में उत्तराखंड के निर्माण के पीछे एक सबसे बड़ी दलील उसके भौगोलिक स्वरूप को लेकर थी। जंगल, पहाड़, खेत और किसान एक पहाड़ी संस्कृति के बिंब थे, लेकिन ये सारे बिंब पिछले 16 साल में धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं और लोगों ने मैदानी इलाकों का रुख किया है। वरिष्ठ पत्रकार अनुपम त्रिवेदी।
पहाड़ की तरफ जाइए, अगर आप पौड़ी गढ़वाल की तरफ जाएंगे, अल्मोड़ा जाएंगे, पिथौरागढ़ जाएंगे, इन क्षेत्रों की अपनी समस्या है। पिछले 15-16 साल में लगातार गांव के गांव खाली हो गए, 1000 से ज्यादा गांव खाली हो गए, सरकारी डेटा है। लगातार ये पलायन चालू है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है।
पलायन और परिसीमन ने पहाड़ की न सिर्फ सांस्कृतिक सामर्थ्य में कटौती कर दी बल्कि उसकी राजनीतिक शक्ति भी कमजोर पड़ती गई। पहाड़ी मामलों के जानकार जय सिंह रावत।
केवल उसका एक आर्थिक कारण भी नहीं था, वो एक सांस्कृतिक पहचान का भी सवाल था। इसीलिए तो पहाड़ों में उद्वेलित हो गए थे लोग, ये चाह रहे थे कि हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी भी अलग बनी रहे। आर्थिक विकास तो था, भौगोलिक कारण भी थे, लेकिन ये भी था।
2006 में उत्तराखंड की विधानसभा सीटों का परिसीमन किया गया था और इसके लिए आबादी को संदर्भ बिंदु माना गया था, जबकि स्थानीय मांग थी कि भौगोलिक दायरे को ध्यान में रखा जाए। और जब आबादी का पैमाना बना तो जाहिर है देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों के मैदानी इलाके चुनावी समीकरणों में उभर कर आ गए। 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा में 36 सीटें मैदानी इलाकों को चली गई और पहाड़ी इलाकों में 34 सीटें ही रह गई।
नेता खिसक के आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता, कोई कोटद्वार से लड़ रहा, कोई डोईवाला से लड़ रहा, हरीश रावत जी बजाय अल्मोड़ा पिथौरागढ़ छोड़ के हरिद्वार से लड़ रहे हैं। वही निसंग जी का है, वही खनूरी जी का है, वही आपके यशपाल आर्य जी का है। एक ध्येय था कि पहाड़ी राज्य बनेगा, ये हिमालयी राज्य बनेगा। किसका हिमालयी राज्य? देहरादून का राज्य हो गया, ये हरिद्वार का राज्य हो गया।
अनुमान है कि 2026 में जब अगला परिसीमन होगा तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से चंद सीटें और मैदानों को चली जाएंगी। जानकारों का कहना है कि ये स्थिति तभी रोकी जा सकती है अगर निर्वाचित सरकारें इस दौरान पहाड़ों में पलायन की समस्या पर आपात कार्रवाई करें, पहाड़ों में वहां के पर्यावरण और भूगोल के लिहाज से उद्योग धंधे लगवाएं, स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को चाक चौबंद और खेती किसानी को बहाल कर उन्हें रोजगार उन्मुख कर दें। लेकिन आज के राजनीतिक हालात को देखकर लगता तो नहीं कि ऐसा मुमकिन हो पाएगा। शिव जोशी, बीबीसी, देहरादून।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक दो झटके दिए। पहला झटका था महाराष्ट्र सरकार को नोटिस पीरियड पर चलने वाली सरकार बताकर और दूसरा गुजरात में पाटीदारी आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल से मुलाकात कर उन्होंने हार्दिक को गुजरात में शिवसेना का चेहरा तक करार दे दिया और ये भी कहा कि वो हार्दिक को हर मौके पर समर्थन देंगे। थोड़ी देर पहले मैंने मुंबई फोन कर स्थानीय पत्रकार अश्विन अघोर से बात की और इस मुलाकात का ब्यौरा मांगा।
मुंबई में इन दिनों नगर निगम चुनाव के चलते राजनीति की हवा गर्म है और हाल ही में शिवसेना ने बीजेपी से अपना 25 साल पुराना गठबंधन तोड़कर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इसके बाद आज गुजरात के पाटीदार समाज के नेता हार्दिक पटेल ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। कहा तो ये गया था कि वे केवल बाला साहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने मीडिया से बात की तब ये बताया गया कि आज शाम को होने वाली जो उद्धव ठाकरे की रैली है उसमें भी हार्दिक पटेल शिरकत करेंगे और उन्होंने अपना सपोर्ट शिवसेना को दिया है। इसमें अब ये हुआ है कि एक परसेप्शन ये बन रहा है कि शिवसेना पहले तो ऐलान कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कोई गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उन्हें ये सब कर पाना मुश्किल लग रहा है, इसलिए वो अब कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से मुंबई में जो नॉन मराठी स्पीकिंग वोटर्स है, पर्टिकुलरली गुजराती कम्युनिटी जो है, उनका सपोर्ट जुटाने के लिए हार्दिक पटेल से हाथ मिला रही है।
ये बताइए, कुछ इस तरह के संकेत हैं कि महाराष्ट्र की सरकार को भी खतरा हो सकता है इस नए डेवलपमेंट से?
अभी ऐसा कुछ संकेत सीधे सीधे तौर पर तो कोई आया नहीं है। बातों बातों में उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा हिंट जरूर छोड़ दिया था कि वो बीएमसी चुनाव के बाद इस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र सरकार को शायद कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि उन्हें सपोर्ट करने वाले और भी कई पॉलिटिकल पार्टीज तैयार है। और इसके बाद मुख्यमंत्री ने भी एक बयान दिया है कि उनकी सरकार को 5 साल तक कोई धोखा नहीं है।
और हार्दिक पटेल को गुजरात में भी समर्थन देने की कुछ बात है?
अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा है कि उनकी पार्टी आने वाले गुजरात असेंबली चुनाव में चुनाव भी लड़ेगी और जिसमें हार्दिक पटेल उनके पार्टी का फेस रहेंगे, मतलब ब्रांड एम्बेसडर की तौर पर हार्दिक पटेल शिवसेना को गुजरात में मदद करेंगे असेंबली चुनावों में।
ये थे मुंबई से स्थानीय पत्रकार अश्विन अघोर। अमरीका में आजकल डोनाल्ड ट्रंप और उनके बाथरोब को लेकर बहस छिड़ी हुई है। बहस इस बात पर हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बाथरोब पहनकर टीवी देखते रहते हैं। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी ने ये रिपोर्ट भेजी है।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी मीडिया की नोकझोंक तो चुनावी मुहिम के समय से ही जारी है, लेकिन कभी कभी इस रस्साकशी में ऐसे मुद्दों पर भी बहस शुरू हो जाती है जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। अब इसी को ले लीजिए कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या बाथरोब या नहाने के बाद पहना जाने वाला गाउन पहनकर शाम को अपने घर में यानी व्हाइट हाउस में टीवी देखते रहते हैं। हुआ यूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी कि ट्रंप का व्हाइट हाउस में समय कैसे गुजरता है। उसमें यह भी जिक्र हुआ कि ट्रंप शाम को 6 बजे के बाद बाथरोब पहनकर टीवी देखते रहते हैं, और यह खबर व्हाइट हाउस को इतनी नागवार गुजरी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके न्यूयॉर्क टाइम्स को एक बार फिर कोसा और यह भी लिखा कि नाकाम होता अखबार चुनावी मुहिम के दौरान तो गलत साबित हुआ ही था, अब मेरे बारे में मनगढ़ंत खबरें भी छापता है। फिर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता शॉन स्पाइसर ने भी पत्रकारों से बात करते हुए अपना गुस्सा दिखाया। वो खबर तो गलतियों और झूठ से अटी पड़ी थी, और मुझे लगता है कि जिस तरह कहानी लिखी गई थी, न्यूयॉर्क टाइम्स को अब राष्ट्रपति से माफी मांगनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति बाथरोब पहनते भी हैं, और ये तो तय है कि उनके पास बाथरोब तो है ही नहीं। व्हाइट हाउस प्रवक्ता शॉन स्पाइसर के इस बयान के बाद ट्विटर पर तो मानो बाढ़ आ गई हो उन फोटो की जिसमें ट्रंप कई दशक पहले बाथरूम में अलग अलग पोज और अलग अलग जगह में बैठे दिख रहे हैं, और लोग चुटकियां भी ले रहे हैं। कोई लिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कई होटलों के मालिक हैं जहां बाथरूम हर कमरे में होती है और खुद वो बाथरूम नहीं पहनते। किसी ने यह सवाल किया कि स्पाइसर को यह पता ही कैसे चला कि ट्रंप के पास बाथरूम है ही नहीं। बल्कि ट्विटर पर तो पोटस बाथरूम नाम का एक अकाउंट अमरीकी राष्ट्रपति की बाथरूम का भी बना दिया गया, और वहां ट्वीट भी किया गया कि ओ आई एग्जिस्ट, यानी जी हाँ मेरा वजूद है। ट्विटर पर ही कुछ लोगों ने ट्रंप को राय भी दे डाली कि बाथरोब पहनना कोई बुरी बात नहीं है, और साथ में पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति रोनल्ड रेगन की बाथरोब पहने हुए कई फोटो भी लगाई गई। वैसे इससे बड़े बड़े मसले भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने मुंह बाए खड़े हैं, जैसे 7 मुस्लिम बहुल देशों के लोगों पर बैन लगाने वाले आदेश पर अदालत में आने वाली चुनौती, रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ कथित दोस्ताना रवैये से खुद उनकी रिपब्लिकन पार्टी में बढ़ती चिंता वगैरह वगैरह। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
देवबंद उत्तर प्रदेश का एक गुंजान आबादी वाला शहर है जो अपनी इस्लामी संस्था दारुल उलूम के लिए भारत और विदेश में जाना जाता है। देवबंद पहचान केवल इस इस्लामी मदरसे से है जिसके फतवे और धार्मिक मामलों में सलाह भारत के मुसलमान आमतौर से मानते हैं, लेकिन क्या देवबंद की केवल हैसियत दारुल उलूम के अलावा है? यहाँ कितने और मदरसे हैं? इस शहर की तस्वीर बयान कर रहे हैं सुपैर अहमद।
देवबंद के दारुल उलूम की इमारतें जितनी सुंदर हैं, देवबंद से सटे हुए गलियों में अगर आप जाएं तो इमारतों की हालत बड़ी खस्ता है। तंग गलियां हैं, दोनों तरफ दुकानें हैं और मकान भी हैं, लोग रहते भी हैं, उसी के बाहर अपने व्यापार कर रहे हैं। और ये जो गली है ये मुसलमानों की गली है, यहाँ पर टोटल मुस्लिम आबादी है। लोग ये समझते हैं आमतौर से कि दारुल उलूम देवबंद का अकेला मदरसा है, लेकिन यहाँ पर 70 से ज़्यादा मदरसे हैं, और हमें ये बताया गया कि 100 से ज़्यादा मस्जिदें हैं। और जिस इलाके में इस वक्त मैं घूम रहा हूँ वहाँ कई मस्जिदें मुझे दिख रही हैं, मदरसे भी दिख रहे हैं। मुस्लिम आबादी एक तरफ और हिंदू आबादी एक तरफ। कुछ कहते हैं कि अलग अलग जो रहते हैं उसके बावजूद दोनों समुदायों के बीच मेल मिलाप काफ़ी है, जैसा कि इन लोगों ने मुझे बताया। आकाश गर्ग साहब, ये बताइए कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम संबंध कैसे
हैं? यहाँ के दोनों संबंध बिल्कुल बढ़िया हैं, सबसे बढ़िया जो है देवबंद में है।
यहाँ पर देवबंद का जो मदरसा है उसके बारे में क्या ख्याल है?
मतलब सबसे बड़ा इस्लामिक उसका शिक्षा केंद्र है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हमारे उनके अंदर है, सबसे बड़ा खासियत है हमारे यहाँ पर। इंडिया से तो बाहर से भी लोग आते हैं पढ़ने के लिए यहाँ पर।
अच्छा, अमित कुमार जी, ये मोहल्ला है देवबंद में, ये इसका नाम क्या है?
सैनियों की सराय।
सैनियों की सराय, मतलब सैनी ही लोग रहे हैं।
जी जी जी, सैनी।
अच्छा, तो ये बताइए कि देवबंद किस बात के लिए प्रसिद्ध है?
देवबंद भाईचारे के लिए प्रसिद्ध है, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए। मशहूर चीज़ तो यहाँ पे एक ये मुस्लिम लोगों का जो है ना ये संस्था है पढ़ाने की बच्चों की, वो उर्दू की, उसे बोलते हैं
दारुल उलूम।
जी, दारुल उलूम।
नाम बता दीजिए।
अजीम सिद्दीकी।
अजीम सिद्दीकी साहब, आपके शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमज़ोर क्यों है?
सर ये टाउनशिप है, हमारी टाउनशिप के हिसाब से ठीक है जी।
कुछ सड़कें टूटी हुई हैं, नाले बाहर निकल रहे हैं पानी, उसमें से गलाजत आ रही है, मतलब काफ़ी गुंजाइश है इसको इम्प्रूव करने।
गुंजाइश है लेकिन टाउनशिप के हिसाब से।
नाम बता दीजिए।
मोहम्मद यामिन मेरा नाम है। काम होता है लेकिन तसल्ली बख्श काम नहीं होता।
खुश नहीं?
हाँ कुछ नहीं।
अभी जो अगली सरकार आएगी उससे क्या चाहेंगे?
उम्मीद तो सबसे की जाती है, होता कुछ नहीं।
मायूसी?
मायूसी।
मुस्लिम समुदाय को क्या चाहिए?
शिक्षित होना चाहिए, सबसे पहले शिक्षित होनी चाहिए। मुस्लिम समुदाय शिक्षित नहीं है।
देवबंद शहर में मुस्लिम बहुमत में है और शहर का एक दौरा करने से इसका अंदाज़ा भी हो जाता है। जहाँ पर आप जाएँ मुस्लिम इलाकों में, वहाँ पर महिलाएँ बुरका पहने घूमती नज़र आएंगी या दुकानों में कुछ चीज़ें खरीदती नज़र आएंगी। इसी तरह से जो मुस्लिम पुरुष हैं वो टोपी लगाए और कमीज़ पजामा पहने अक्सर आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। उनमें से एक साहब हैं जो ये समझते हैं कि शायद हिंदू मुस्लिम मिलाप और गंगा जमनी तहजीब, जिसके लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है, ये सब एक सतही चीज़ें हैं, असल में मिलाप नहीं हो सकता। देखिए साहब, आपको ऐसा लगता है कि हिंदू मुस्लिम एक पीसफुल तरीके से को एग्जिस्ट कर सकते हैं या अनईजी को एग्जिस्टेंस रहेगा?
इस्लाम ने कंसेप्ट दिया है कि मुसलमान और हिंदू आग और पानी की तरह है, ये दोनों इकट्ठे नहीं हुआ करते, हो सकते हैं। भले ही हम कहें भाईचारा है, भाईचारा है नहीं भाईचारा।
जब भी देवबंद का नाम आता है तो लोग ये समझते हैं कि देवबंद सिर्फ दारुल उलूम की वजह से जाना जाता है, और ये बात सही भी है। तो कुल मिलाकर हमें ये समझ में आया कि दारुल उलूम का जो अपना कैंपस है वो सुंदर है, काफ़ी बड़ा भी है, और इसकी इमारतें काफ़ी सुंदर हैं, मस्जिद भी काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन दारुल उलूम के बाहर जो देवबंद शहर है वो काफ़ी खस्ता हाल में है। सड़कें टूटी फूटी हैं और 3 सिनेमाघर यहाँ पर हैं वो बंद हैं। जो मदरसे दारुल उलूम के बाहर हैं वो भी छोटे छोटे हैं। अगर दारुल उलूम को हटा दिया जाए देवबंद शहर से तो देवबंद आने की ज़रूरत शायद आपको महसूस ना हो। ज़ुबैर अहमद, BBC देवबंद।
और अब नज़र दौड़ाते हैं खेल समाचारों पर।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले इकलौते टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम को झटका लगा है। दाएं हाथ के लेग स्पिनर अमित मिश्रा चोट के चलते इस टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे। उनकी जगह कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया गया है। अमित मिश्रा को इंग्लैंड के खिलाफ बेंगलुरु में खेले गए आखिरी T20 मैच के दौरान चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उन्हें आराम की सलाह दी गई है। घरेलू क्रिकेट में यूपी टीम की तरफ से खेलने वाले कुलदीप ने अब तक 22 मैचों में 33.11 के औसत से 81 विकेट हासिल किए हैं। वहीं इस टेस्ट मैच को भारतीय टीम के कोच अनिल कुंबले अलग नज़र से देख रहे हैं। उनका ध्यान इस मैच के जरिए अपनी टीम में सुधार करने पर है।
इंग्लैंड के खिलाफ हमने जहां से क्रिकेट छोड़ी थी हम वहीं से शुरू करेंगे। अब तक का घरेलू सत्र हमारे लिए अच्छा रहा है, हम यहीं से आत्मविश्वास आगे लेकर जाना चाहेंगे।
और वहीं ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप T20 में आज भारत ने अपना मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ 9 विकेट से जीत लिया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को जीत के लिए 137 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने 9 ओवर में ही हासिल कर लिया। भारत के लिए अजय कुमार रेड्डी ने नाबाद 75 और सुखराम मांझी ने नाबाद 56 रन की पारी खेली। भारत अंक तालिका में पाकिस्तान के बाद दूसरे नंबर पर बना हुआ है। उसके खाते में 6 जीत के बाद 18 अंक हैं। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर।
BBC समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि नोटबंदी का फैसला सही समय पर लिया गया। AIADMK के वरिष्ठ नेता PH पांडियन ने शशिकला के पार्टी महासचिव और विधायक दल का नेता चुने जाने पर सवाल उठाया है। नेपाल पुलिस के मुताबिक उन्होंने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है जिसके कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के गैंग से संबंध है। शमशुल हुदा नाम के इस शख्स पर भारत ने रेल हादसे की योजना बनाने का आरोप लगाया है। रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस योहानिस ने देश की सत्ताधारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी पर संकट की स्थिति खड़ी करने का आरोप लगाया है। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे देवशीष कुमार, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार।